सच्चिदानंदना जय 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 सच्चिदानंदना सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 राम Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आज कथा शुरू करने के पहले सारे भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे ये साप्ताहिक चैतन्य चरतामृत क्लास। तो विशेष रूप से मैं सारे भक्तों से आशीर्वाद की याचना करना चाहूँगा कि आज के सब्जेक्ट मैटर पे कुछ भगवान की प्रसन्नता और भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ बोल सके, विशेषकर सारे वरिष्ठ वैष्णवगण से, वैष्णव शिव दत्तों से और राम राघव प्रभु जी से, श्याम कृष्ण प्रभु जी से, अन्य वैष्णव से। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला अध्याय 9 पयार संख्या 222। तो इस पयार को रिसाइट करने के पहले 282 सॉरी हिंदी डेली। तो इस पयार को रिसाइट करने के पहले हल्का सा हम प्रीव्यू लेंगे, क्योंकि ये इतना साप्ताहिक होती है क्लास, पर कभी कभी मासिक हो जाती है, कभी कभी बहुत अंतराल के बाद आती है। तो एक हल्का बताना चाहिए, चैतन्य चरता में क्या प्रसंग चल रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, और भारत के कौन से हिस्से की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, नहीं 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 साउथ इंडिया छोड़ के अभी वेस्ट इंडिया आ गए, साउथ इंडिया में निकले थे, साउथ इंडिया कंप्लीट हो गया, वेस्टर्न के महाराष्ट्र के साइड में आ गया। मेरा यही क्वेश्चन था, मैं पूछ रहा था, लोग सभी बोलेंगे साउथ इंडिया एग्जैक्टली, हाँ कह सकते हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया से जो नीचे साउथ में पड़ता है। तो साउथ में कहाँ कहाँ गए थे महाप्रभु, हल्का सा क्विक, सबसे पहले किधर से शुरू किया था, जो जगन्नाथपुरी से निकलने के बाद सबसे पहले किधर गया महाप्रभु, श्रीरंगम तिरुपति किधर किधर, हम रामन राय से मिले पर उसके पहले और किसी और जगह गए, बहुत फास्ट फास्ट फास्ट, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की कथा आती है, कुरुक्षेत्र में महाप्रभु कुरु ब्राह्मण से मिले और एक और महान भक्त से मिले, क्या नाम था उसका, वासुदेव विप्र, जिसके शरीर में गुड़ कुष्ठ रोग होता है। फिर महाप्रभु वहां से गए सिंहाचलम और फिर करते करते आंध्र में एंटर किए, महाप्रभु तिरुपति गए और फिर वहां से मदुरई का भी लीला आता है जहाँ पे वो राम 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 कहते वो रामदास विप्र मिलते हैं उनको, और फिर महाप्रभु का वाला लीला आता है, महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचते हैं, कई सारे अन्य लीला स्थलियों पे जाके तो फिर महाप्रभु श्रीरंगम में कई जगह, श्रीरंगम के आसपास में कई और जगह जाने के बाद, कुंभकोणम इत्यादि इन सारी जगह पे जाने के बाद में महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचे, और महाप्रभु ने अपने दक्षिण भारत में कई सारे स्थानों पे गए, अलग अलग दिन अलग अलग उनके रुकते थे, परंतु श्रीरंगम में कितने समय रुके, 4 महीने रुके। तो महाप्रभु का एक प्रीचिंग प्रोग्राम था, पर प्रीचिंग प्रोग्राम में कुछ कुछ जगह महाप्रभु स्पेशल स्टॉप्स लेते थे, तो एक स्टॉप लिया था उन्होंने गोदावरी के तट पर रामन राय के साथ में, और दूसरे यहाँ सबसे लंबा स्टॉप लिया 4 महीने के लिए, यहाँ पे किसके लिए लिया था उन्होंने विशेष स्टॉप, ये गोपाल भट्ट के लिए, तो आगे चल के जो गोपाल भट्ट गोस्वामी बने। और फिर श्रीरंगम से महाप्रभु आगे निकले, रामेश्वरम गए, कन्याकुमारी और उधर से भ्रमण करते करते महाप्रभु तिरुवनंतपुरम वहाँ पे, और बीच में आदि केशव के दर्शन किए। आदि केशव भगवान, जहाँ पे आदि केशव के दर्शन जब उन्होंने किए तो यहाँ पे क्या मिला महाप्रभु को? ब्रह्म संहिता, एक और ग्रंथ मिला था कृष्ण करना में। दो ग्रंथ मिले महाप्रभु को, जो महाप्रभु ने कॉपी लेके सारे वैष्णवों के लिए लेके आए। आज हमें ब्रह्म संहिता मिलती है आदि केशव मंदिर में। आप में से कोई गया आदि केशव मंदिर? भक्त लोग जाएंगे तो विग्रह ज्यादा बड़े नहीं है सर, 22 फीट के हैं। 22 फीट के विग्रह हैं, आपको 3 अलग अलग दरवाजों के थ्रू उनके दर्शन करने पड़ेंगे। और वहीं से थोड़ी सी आगे जाके अनंत पद्मनाभ जी का मंदिर है तिरुवनंतपुरम में, जो कि आज के समय में लोगों ने चेंज करके उसको त्रिवेंद्रम कर दिया है, जबकि नाम उसका तिरुवनंतपुरम है, मतलब अनंत भगवान और तिरु मतलब लक्ष्मी देवी। वहां से करते हुए ये केरला, केरला से महाप्रभु कर्नाटक, कर्नाटक में कौन मिला? कर्नाटक में महाप्रभु किससे मिले? वेस्टर्न साइड में आ जाता है कर्नाटक, हाँ, तत्ववादी संप्रदाय। तो अभी जो पिछला प्रसंग चल रहा था तो वहां महाप्रभु इन तत्ववादियों से मिल रहे थे। तत्ववादियों के साथ में महाप्रभु ने कैसे बताया कि आपकी जो भक्ति वो कर्म मिश्र एक प्रकार से हो गई है, आप वर्णाश्रम को ही सुप्रीम मानने लग गए हो। और फिर महाप्रभु वहां से निकल के अभी महाप्रभु महाराष्ट्र की तरफ आ गए हैं। पिछले कुछ श्लोकों में से ये चर्चा हुई थी, एक क्लास से सुनील भक्ति माधुर गोविंद महाराज ने ली थी, जो थाने के पास में महाराज डिक्लेयर कर रहे थे कि महाप्रभु गए थे हमारे स्कॉनवीरा रोड टेम्पल, मुझे नहीं पता पर। और उसके बाद में एक और क्लास हुई, मेरे ख्याल से कहना ली शचीपति प्रभु जी ने ली, जो महाप्रभु कोल्हापुर गए। और फिर अभी महाप्रभु महाराष्ट्र के फेमस तीर्थ पंडरपुर में पहुंचे। तथा ही थे पंडरपुरे आइला गौर चंद्र, विठल ठाकुर देखी पहला आनंद, तथा ही थे पंडरपुरे आइला गौर चंद्र, विठल ठाकुर देखी पहला आनंद, तथा है ते पंडरपुरे आइला गौर चंद्र, विठल ठाकुर देखी पहला आनंद। शब्दार्थ तथा है ते वहां से पंडरपुरे, पंडरपुर आइला आए गौरचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु, विठल ठाकुर विठल नामक विग्रह देखी, देखकर पहला पाया आनंद आनंद। अनुवाद, वहां से श्री चैतन्य महाप्रभु पंडरपुर गए, जहां उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक विठल ठाकुर का मंदिर देखा। तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पंडरपुर शहर भीमा नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु पंडरपुर गए तब उन्होंने तुकाराम को दीक्षा दी और इस तरह तुकाराम उनके शिष्य बने। तुकाराम आचार्य महाराष्ट्र प्रांत में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए और उन्होंने सारे प्रांत में संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया। आज भी तुकाराम की कीर्तन टोली मुंबई में और सारे महाराष्ट्र में, सारे महाराष्ट्र राज्य में अत्यंत लोकप्रिय है। इनकी लिखी हुई पुस्तक अभंग है, अभंग। उनकी संकीर्तन टोली गौड़िया वैष्णव कीर्तन मंडलियों जैसी ही है, क्योंकि वे भी मृदंग तथा करताल के साथ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। इस श्लोक में उल्लेखित विठल देव दो भुजाएं वाले विष्णु के रूप हैं और वे नारायण हैं। तो आज हम देख रहे हैं एक और महान आचार्य और महान भगवान के शिला गदाधर पंडित, उनका भी आविर्भाव दिवस है। तो एक हमारे तात्पर्य में श्री चैतन्य महाप्रभु पंडरपुर पहुंचे, वहां पर महान भक्त तुकाराम जी के बारे में विवरण कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। और हमारे महान आचार्य गौड़ियाचार्य श्री गदाधर पंडित जो कि पंचतत्व में से एक हैं, शक्ति तत्व के स्वरूप हैं, उनका भी आविर्भाव दिवस है। हर साल हम गदाधर पंडित के आविर्भाव और तिरुभाव दिवस भी जब मनाते हैं तो गदाधर पंडित की कथा सुनते ही हैं। बहुत लोग मायापुर भी जाते होंगे तो वहाँ पर भी गदाधर पंडित की कथा सुनते होंगे, तो हम पूरा उस लीला को नहीं कहेंगे, पर गदाधर पंडित की जीवन से एक उनकी लीला में से एक पर्टिकुलर लीला पर हम चर्चा करेंगे। और मैंने प्रयास किया, जैसे तुकाराम जी का वर्ष ये मिला तो मैं थोड़ा प्रयास किया तुकाराम जी के बारे में पढ़ने को। वृंदावन प्रभु हैं, उन्होंने तुकाराम जी के जीवन पे और शिक्षाओं पे एक बुक लिखी है। ये वर्करी संप्रदाय में ही इनका जन्म हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में तुकाराम जी के अभंग गाने वाले संप्रदाय, पर बाद में इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन के संपर्क में आए और भक्त बने। उन्होंने ये बुक लिखी है, इसे मैंने कुछ पढ़ने का प्रयास किया तो कुछ एक सिंक्रोनस लाइन ऑफ थॉट नहीं बना पा रहा था इधर भी उधर भी। तो फिर मुझे एक समझ में आया कि हम एक चीज़ जानने का प्रयास करें, जब दोनों को जीवन पे थोड़ा विचार किया और तुकाराम जी के जीवन को खूब अच्छे से पढ़ा, तो मैंने कहा देखें कि जो वैष्णव जो रिलीजन है ये कितना यूनिवर्सल, ये किसी बाउंड्रीज के अंदर में पैक नहीं है कि हम गौड़िया हैं, हम साउथ इंडियन हैं, हम महाराष्ट्रियन हैं या हम वेस्टर्न है, ऐसा नहीं कि किसी बाउंड्री या किसी कल्चर के अंदर में ये ट्रैप्ड है। ये बहुत ही यूनिवर्सल है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पे किसी भी काल में किसी भी स्थान पे अगर भगवान की भक्ति के ट्रू सिम्टम्स को एक्सिबिट करता है, सही चिन्हों को अगर प्रकाशित करता है तो वो वैष्णव है, चाहे वो हमारी लाइन में हो या किसी भी और लाइन में हो। श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है जिसमें कीर्तन पे हरि नाम संकीर्तन पे जोर हुआ, भगवान के नाम को लेने जप करने उस सारी चीज़ों पे जोर हुआ। और हम देखते हैं तुकाराम जी का आंदोलन, श्री श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बोल भी रहे हैं कि उन्होंने खूब कीर्तन किया, वो कीर्तन गौड़िया वैष्णव के ही संकीर्तन की तरह है। तो मुझे एक और चीज भी याद आई कि श्रील प्रभुपाद बोलते थे जीसस क्राइस्ट के बारे में भी, कि कैसे उन्होंने कमांडमेंट दिया दाउ शैल्ट चैंट ऑलवेज चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, दाउ शैल्ट लव गॉड विद ऑल दाई हार्ट एंड ऑल दाई सोल। वो अलग है कि उनके कई सारे फॉलोअर्स हो ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते, जैसे कि सनातन धर्म के फॉलोअर्स भी सनातन धर्म के टीचिंग्स को कई सारे फॉलो नहीं करते, परंतु जो ओरिजिनल आचार्य रहे हैं उनकी टीचिंग्स अपने आप में, शिक्षाएं अपने आप में बहुत प्योर हैं, शुद्ध हैं। उनके एग्जाम्पल जो उन्होंने जो लीला जो उन्होंने अपना जीवन जिया वो एग्जाम्पलरी है, प्रेरणा स्रोत है हम सभी के लिए। और एक पर्टिकुलर वर्स जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है वो हर एक संत के जीवन में निकल के उभर के आता है, वो है त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्य नमान देना कीर्तनिया सदा हरि। ये एक वर्स ऐसा है जिस इज लाइक लिटमस टेस्ट ऑफ समबडी इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स हाउ मच ही इज प्रोग्रेसिंग इन स्पिरिचुअल, कैसे वो ट्रू रिलीजन असली धर्म है वो आगे प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये धर्म जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि अगर हमें सदा हरि नाम का संकीर्तन करना है, सदा हरि नाम लेना है, तो हमें घास के तिनके से भी नीच अपने आप को समझना पड़ेगा और पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु न होना पड़ेगा, अपनी मान की इच्छा नहीं रखनी पड़ेगी और सदा दूसरे को मान देने की मान देना पड़ेगा। इस भाव में व्यक्ति हमेशा हरि नाम ले सकता है, ये क्वालिफिकेशन है उस व्यक्ति का जिससे वो हरे हमेशा हरि नाम संकीर्तन कर सकता है। इसी भाव को आचार्यों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। एक श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का एक भजन है, संभव मैं सोच रहा था ये टेलीविजन स्क्रीन काम कर रही होगी बट कुछ लास्ट मोमेंट्स में मुझे बाद में थोड़ी देर पहले आज पता चला कि वो स्क्रीन काम नहीं करे, तो फिर एक भजन है हम उसको ऐसे सुनाते हैं कि भजन है श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानस तुहार, श्री श्री राधा राधे कृष्ण बलराम की जय, प्रभुपाद की जय। परम यतने तहि लभो अधिकार। इफ यू डिजायर टू एंगेज इन, अगर आपकी इच्छा है कि आप हमेशा हरिनाम संकीर्तन करें, मैं सीधे उसके अनुवाद को पढ़ता हूं। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, अगर हमारी इच्छा है कीर्तन या सदा हरि करने की, तो भक्तिनाथ ठाकुर इस भजन में कह रहे हैं कि हमें वो क्वालिफिकेशन, वो योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। क्या है वो योग्यता? हमें हमेशा अहंकार को दूर रखना पड़ेगा और अपने आप को नीच, निम्न और विनम्र भाव को अनुकूल करना पड़ेगा। अपने आप को नीच निम्न मानना पड़ेगा, अपने आप को बहुत बड़ा महान समझने की जरूरत नहीं। इस नीच निम्न का मतलब यह नहीं कि इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि हम समझें हम किसी लायक नहीं, ये नहीं। हम भगवान की सेवा के लिए बनाए हुए, भगवान चाहे तो हमारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, भगवान के पास है, ये कुछ भी किया जा सकता। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीन धारणम। पर अपने आप में मेरे अंदर कोई खास योग्यता नहीं। भक्तिनाथ ठाकुर आगे कह रहे हैं, वृक्ष समशम गुण करो भी साधन, प्रतिहिंसा त्याजी अन्य करो भी पालन। कि हमें हमेशा क्षमा का अभ्यास करना पड़ेगा, जैसे एक पेड़ करता है। पेड़ को अगर कोई पत्थर मारता है तो फल देता है, वो क्षमा कर देता है। तो वैसे ही हमें क्षमा का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और किसी भी अन्य जीव पे हिंसा त्यागनी पड़ेगी, प्रति हिंसा त्याजी अन्य करो भी पालन, और अन्य लोगों को पालन पोषण करना पड़ेगा। भक्तिनाथ ठाकुर हमें आज्ञा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अन्य लोगों पे हिंसा त्याग करके उनको उनकी रक्षा कीजिए और उनका पालन कीजिए। जीवन निर्वाहे आने उद्वेगे ना दीबे, परा उपकारे निज सुख पसारीबे। अपना जीवन निर्वाह करते हुए, जीवन निर्वाह करना पड़ेगा, उसके लिए कई काम धंधा हमें एक्शंस करने पड़ते हैं, सोना पड़ता, खाना पड़ता, चलना पड़ता है। परंतु ये सब इस प्रकार से करे कि अन्य उद्वेग ना दीपे, अन्य लोगों को किसी प्रकार का उद्वेग ना दे। पर उपकारे निज सुख पसारीबे, और दूसरों को उद्वेग देने की बात तो छोड़िए, दूसरों के प्रति उपकार करने का अभ्यास करना पड़ेगा, और अपनी सुख के आशा को छोड़कर दूसरों पर उपकार करने का अभ्यास। होइले ओ सर्व गुणे गुणी महाशय, प्रतिष्ठा सा छाड़ी करो अमानी हृदय। और मान लीजिए कोई इस प्रकार से सारे गुणों से संपन्न हो भी जाता है, उस व्यक्ति को हर प्रकार के फेम या हर प्रकार की मान की इच्छा, हर प्रकार के सम्मान की इच्छा से मुक्त होकर उसे विनम्र भाव से रहना चाहिए। इस प्रकार से भक्तिनाथ ठाकुर और भी चीजें बोलते हैं इस ग्रंथ में। पर यहाँ पे एक पॉइंट पे जिसपे हम फोकस करना चाह रहे हैं कि अपनी इच्छा, अपने सुख की इच्छा को त्याग कर ऐसा जीवन जिए कि जिसमें दूसरे को उद्वेग ना दिया जाए, इनफैक्ट दूसरों को उद्वेग ही देना नहीं, दूसरों को पालन पोषण करने का अभ्यास। ये वैदिक काल में एक व्यक्ति के लिए ये अभ्यास दिया जाता था उसको। हमने सुना है जैसे गृहस्थ आश्रम में लोग होते थे, वो सभी को घर में सारे लोगों को भोजन कराते थे, अतिथियों को भोजन कराते, तो बाहर जाके वो बजाते भी थे अगर कोई है, और भूखा आवाज भी लगाते थे, कोई भूखा है आ जाओ। पर आज अगर आवाज लगे बेचारे को बचेगा नहीं। परंतु इस भाव को विकसित करने का यहाँ पे बात की जा रही है कि हम किसी और को उद्वेग ना दें और अपने सुख की इच्छा से हीन होकर दूसरे को, दूसरों की सेवा करें, दूसरे को पालन करें, उनको मेंटेन करें। ये भक्तिनाथ ठाकुर करें। इस प्रकार के क्वालिफिकेशन से हमारे अंदर में सदा हरि नाम जप करने की योग्यता बन जाती है। इस ये क्वालिफिकेशन में सदा हरि नाम जपने के योग्य बनाता है। तो हमने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु अभी दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले। जब दक्षिण भारत की यात्रा कंप्लीट करके श्री चैतन्य महाप्रभु आए, तो उन्होंने फिर इच्छा व्यक्त की अभी उनको वृंदावन जाना है। बड़ी मुश्किल से तो साउथ इंडिया से 2 साल लगभग लगा के वो पहुंचे थे यहाँ पे जगन्नाथपुरी, अभी जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद कुछ थोड़े समय बाद बोल रहे हैं कि मुझे अभी वृंदावन जाना है, तो भक्त लोग टालते रहे किसी प्रकार से। फिर फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े, और श्री चैतन्य प्रभु इस बार निकले वृंदावन के लिए तो बहुत सारे भक्त उनके साथ चलने लग गए। कौन कौन भक्त चल रहे हैं? प्रभु संग पुरी गोसाई स्वरूप दामोदर जगदानंद मुकुंद गोविंद काशीश्वर हरिदास ठाकुर आर पंडित वक्रेश्वर गोपीनाथ आचार्य आर पंडित दामोदर रामाई नदाई आर बहु भक्त गण प्रधाना कहिनु सबार के करे गणना। तो कईयों के तो नाम दिए यहाँ पे, परमानंद पुरी स्वरूप दामोदर जगदानंद मुकुंद गोविंद काशीश्वर हरिदास ठाकुर वक्रेश्वर पंडित गोपीनाथ आचार्य दामोदर पंडित। कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि मैंने मुख्य मुख्य के नाम दिए, इतने सारे जा रहे थे किन किन का नाम दूं। तो पूरी प्रैक्टिकली कह सकते बटालियन के साथ वृंदावन यात्रा पे निकले, और आगे इतने इतने लोग ज्वाइन करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु को, इतने लोग ज्वाइन करेंगे, कोई महाप्रभु के चरण छूने का प्रयास करेंगे। इनफैक्ट ऐसी हालत हो जाती है आगे कि महाप्रभु जहां जहां पे चरण रखे होंगे, महाप्रभु के कीर्तन कर रहे थे, जंप करते थे, एक चरण यहाँ पर होता, अगला चरण कहीं और होता, तो ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल नहीं होता था पीछे से आने वाले व्यक्ति के लिए कि महाप्रभु ने कहाँ चरण रखा, कैसे कैसे हम जान सकते हैं महाप्रभु ने कहाँ चरण रखा। कि जहां पर महाप्रभु ने चरण रखा था वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता था, इतने सारे लोग थे वहां से धूली उठा उठा के आगे बढ़ते थे कि वहां पर गड्ढा करते करते तालाब टाइप का भी होने लग जाता था, लाखों लाखों लोग आगे ज्वाइन करते हैं। इस प्रकार के महाप्रभु के आगे वृंदावन यात्रा चलती है, वृंदावन की तरफ जाने का प्रयास कर रहे होते हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी से जस्ट निकले ही हैं और कटक पहुंचे। हम लोग अभी जनवरी में, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम महाप्रभु के ये लीला स्थली जो कि जगन्नाथपुरी में है, कई लीला स्थली गए, उनमें से उस कटक स्थली पे भी गए, कटक में जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला की जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो महाप्रभु जब इस जगह पे पहुंचे तो कई सारे भक्त, एक भक्त महाप्रभु के साथ में चल रहे थे, उनको देख के उनका प्रेजेंस महाप्रभु को बार बार खटक रहा था, कटक में कुछ खटक रहा था महाप्रभु, ये क्या हो गया, ये भक्त यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? कौन थे ये भक्त? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित महाप्रभु के इतने प्रिय हैं तो महाप्रभु को खटक क्यों रहा था उनका प्रेजेंस? हुआ ये कि श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में जगन्नाथपुरी आए और सची माता ने उनसे प्रॉमिस ले लिया कि तुम यहीं पर पुरी में रहना, पुरी और नदी एक ही घर के दो कमरे के समान है, तो तुम वहां पर रहोगे, मुझे पता चलता रहेगा, जब वृंदावन चले जाओगे तो मेरे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिलेगी। तो वहां पर उन्होंने संन्यास ले लिया, वहां पर रहने लगे। अब गदाधर पंडित महाप्रभु के बिना कैसे रह सकते थे, वो वहां पर पहुंचे। तो जब वहां पर पहुंचे तो अभी उनको पता था थोड़े दिन मैं दर्शन करूंगा, मिलूंगा, उसके बाद महाप्रभु बोलेंगे कि जाओ यहां से वापस जाओ, भी नवद्वीप जाओ, सबको भेज ही रहे थे महाप्रभु। तो गदाधर पंडित इससे पहले कि महाप्रभु उनको कुछ बोलते बोलते कि देखा, महाप्रभु कुछ ने देखा कि गदाधर पंडित कुछ अलग सी वेशभूषा में आ रहे हैं, उनके पास बाल बाल साहब कुछ अलग से दिख रहे हैं। क्या बोले, गदाई क्या हो गया? बोले महाप्रभु आपसे मैं एक चीज बताना थोड़ा भूल गया, मैंने क्षेत्र संन्यास ले लिया है। बोले क्षेत्र संन्यास कब लिया? बोले अभी भी लिया। क्षेत्र संन्यास का मतलब कि ऐसा संन्यास लिया कि वो अभी यहीं पे इसी क्षेत्र में रहेंगे, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। वो क्षेत्र संन्यास था जगन्नाथपुरी का, कि मैंने क्षेत्र संन्यास लिया कि मैं पुरी में रहूंगा। उन्होंने गदाधर पंडित ने महाप्रभु को बताया, क्योंकि महाप्रभु ने प्रॉमिस लिए किया था कि वो पुरी में रहेंगे। गदाधर पंडित ने बोला कि अभी मैंने क्षेत्र संन्यास ले लिया पुरी का, अब महाप्रभु मेरे को ये नहीं कह पाएंगे कि तुम पुरी छोड़ के जाओ, अब तो मुझे यहीं पर रखना पड़ेगा महाप्रभु को। तो ये उन्होंने ट्रिक चला, तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, अब ले लिया तो ठीक है। तो वो भी महाप्रभु के, जो महाप्रभु के दो ग्रुप थे वैष्णवों के, भक्तों के एसोसिएट्स, एक तो गौड़िया वैष्णव, एक उड़िया वैष्णव। तो जो बंगाल से आते थे उड़िया से, यहाँ पे जगन्नाथपुरी में ज्यादातर उड़ीसा के भक्त थे, काशीश्वर पंडित, सार्वभौम भट्टाचार्य, अन्य सारे भक्त। तो बंगाल वाले तो बंगाल चले गए थे, कुछ रह गए थे, उनमें एक गदाधर पंडित हो गया। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि यहाँ पे है डेली, क्या करेंगे, कुछ जैसे डिसाइपल आ गया कहीं पे, तो गुरु जैसे डिसाइपल को देखता है तो उनकी चिंता बढ़ती है कि क्या कर रहा है यहाँ पे, खाली बैठ के क्या करेगा। तो तुरंत महाप्रभु ने कुछ एंगेजमेंट सोचा, तो गदाधर पंडित जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कुछ गार्डन थे, टोटा था, तो वहाँ पे महाप्रभु गए और गदाधर पंडित के साथ बैठे थे, फिर महाप्रभु एकदम से भावावेश में आए और रेत में से कुछ बोले, भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे, कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते करते उन्होंने रेत हटाना शुरू किया और देख एकदम से वहां से कौन प्रकट हुआ, गोपीनाथ के विग्रह। आज हम जाते हैं जगन्नाथपुरी, आपको टोटा गोपीनाथ जी के दर्शन होंगे, तो गोपीनाथ विग्रह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। उस समय वो विग्रह बैठे नहीं थे, खड़े हुए थे, तो गोपीनाथ और राधा रानी प्रकट हुए वहां पे, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर अभी तुम ये गोपीनाथ की सेवा करो, ये राधा गोपीनाथ तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ पे प्रकट हो गया। अभी बताइए कि अगर एक डीटी इंस्टॉल हो जाए, जहां पे हमारा कोई मंदिर खुलता है डीटी इंस्टॉल होती है, तुरंत चिंता पड़ जाती है, एक सेट डीटी आ रही, दो सेट डीटी आ रहे, कितने डीटी आ रहे, गौर नेताई भी हैं कृष्ण मंदिर, तो सबसे पहले चिंता क्या आएगी टेम्पल मैनेजमेंट की, पुजारी कौन है, कितने पुजारी है, पांच बार भोग लगाना, आरती करना, श्रृंगार करना, ये करना, तीन चार लोग मिलकर करते हैं तो जाके पूरा एग्जॉस्ट रहता है, तो भी वो पूरा एंगेज रहते हैं, इतना एग्जॉस्टेड रहते, इतना एंगेज रहते हैं कि हर पल उनके, देखिए कभी उनके थकान ये सब उनको दिखता रहता है भगवान की सेवा, हमारे मृत और प्रभु है, देखते हैं हर प्रकार से हर समय सेवा में लगे रहते हैं भगवान की, और कभी कभी कोई भी पुजारी अन्य एबसेंट होते हैं, पूरा इन्हीं के सर पे दामोदर आता है जो भी लीड ले रहा होता है सर्विस में। तो वहां पर सोचिए गोपीनाथ विग्रह इंस्टॉल हुए, जब गोपीनाथ विग्रह प्रकट हुए और वहां पर इंस्टॉल किया, मतलब वहां पर जब सेवा के लिए आए, तो पूरी तरीके से जिम्मेदारी किस पे थी, गदाधर पंडित पे, अभी फुली एंगेज हो गए, हर समय वो गोपीनाथ की सेवा के अलावा कुछ और कर ही नहीं पा रहे थे, उनका श्रृंगार करना, भोग लगाना, और भोग लगाने के लिए ऐसे नहीं कि सारा डोनेशन अपने आप रखे, भिक्षा लेकर अरेंज करना, कुछ कलेक्ट करना, भोग लगाना, इस प्रकार से सेवा में लगते थे, तो इस प्रकार से सेवा कर रहे थे। इसी बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा व्यक्त की कि अब वृंदावन जाएंगे, अब वृंदावन के लिए निकलने लगे। अब जब महाप्रभु वृंदावन के निकले, गदाधर पंडित ने शेर संन्यास किस लिए लिया था, कि वो महाप्रभु के साथ में रह सके, महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं तो गदाधर पंडित यही मैं क्या करूंगा पुरी में, वो भी साथ में चलने लग गए। जब वो साथ चलने लगे महाप्रभु के, तो महाप्रभु बार बार देख रहा उनको खटक रहा, इसने लिया था क्षेत्र संन्यास, ये कर रहा गोपीनाथ की सेवा है, इसको करनी थी, गोपीनाथ को छोड़ के क्षेत्र संन्यास छोड़ के मेरे साथ में चल रहा है, बार 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 उनको देख के देख रहे गदाधर पंडित, तो गदाधर पंडित कुछ बिल्कुल जैसे इनडिफरेंट, कोई कुछ हुआ नहीं, कुछ अपना चलते जा रहे हैं। तो थोड़े से कुछ प्यार पढ़ता हूँ, गदाधर पंडित या बे संगेत चलीला, क्षेत्र संन्यास ना छाड़ी जा, प्रभु निषेधिला। तो गदाधर पंडित साथ चलने लगे, महाप्रभु ने बोला क्षेत्र संन्यास क्यों छोड़ रहे हो, पंडित कहे यहाँ तुम्हें से नीला चला, क्षेत्र संन्यास मोरा योग रसातल। तो बोलते हैं कि जहां पे आप हैं महाप्रभु, आप चल रहे हैं तो वहां पे नीलाचल है, आप नीलाचल धाम साहब भिन्न है तो मैं नीलाचल में है, और रही बात क्षेत्र संन्यास, मेरा क्षेत्र संन्यास गया रसातल में, मतलब नरक में गया, भाड़ में गया, तो आप चिंता मत कीजिए। प्रभु कहे इहा करा गोपीनाथ सेवा न, पंडित कहे कोटि सेवा त्वत्पाद दर्शना। कि महाप्रभु कह रहे गोपीनाथ की सेवा का क्या होगा, बोले कि गोपीनाथ की करोड़ों बार सेवा हो जाएगी अगर आपकी एक चरणों की एक बार दर्शन हो गया, आपके चरणों का एक बार दर्शन करने से गोपीनाथ की करोड़ों बार सेवा हो रही है। प्रभु क्या कहे, प्रभु कहे सेवा छाड़ी है अमय लागे दोष, यहा रही सेवा कर अमारा संतोष। महाप्रभु ने कहा कि तुम सेवा छोड़ के जा रहे हो, मेरे साथ जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे, ये महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के साथ में, चैतन्य महाप्रभु के साथ में चलने के लिए अपने पार्षद को ले गए और गोपीनाथ की सेवा छोड़ के चल गए, सब लोग मुझे दोष देंगे, इस प्रकार से तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे संतोष नहीं हो रहा है। तो गदर पंडित कहे, पंडित कहे सब दोष हमारा ऊपर, आप चिंता मत कीजिए मैं सारा दोष लेता हूं, तुम असंग ना याई बा याई बे एकेश्वर, कि आप चिंता मत कीजिए कि मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगने का, मैं आपके साथ नहीं चल रहा हूं, मैं अलग चल रहा हूं, देखिए ग्रुप अलग चल रहा है, मैं अलग चल रहा हूं, मैं थोड़ा अलग चलूंगा। आई देखी ते आई बे ना याई बे तुम लागी, कौन कहता है मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मैं तो शची माँ के दर्शन करने जा रहा हूं बंगाल। प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तारा आमी भागी, प्रतिज्ञा मैंने छोड़ी है, सेवा मैंने छोड़ी है, दोष मुझे लगेगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो। एता बलि पंडित गोसाई पृथक चलीला, कटकाशी प्रभु तारे संगे आना इला। तो गदाधर पंडित अलग चलने लगे और चलते चलते कटक पहुंचे। अब कटक पहुंचे, पंडित तेरे गौरंग प्रेम भुजी नन आए, प्रतिज्ञाशी कृष्ण सेवा छाड़ी हाथ ऋण प्राय। तो ताहरे चरिते प्रभु अंतरे संतोष, ताहर हाते धरी कहे करी प्रयण रोष। तो चैतन्य महाप्रभु को अंदर से तो संतोष हो रहा था कि कितना मेरे से प्रेम करता गदाधर, पर बाहर से महाप्रभु मर्यादा स्थापित करने के लिए थोड़ा सा रोष दिखा रहे हैं। और गदाधर का हाथ दिया, हाथ में हाथ पकड़ के, ये महाप्रभु का स्ट्रैटेजी होता था, बड़े प्रेम से हाथ में पकड़ के आलिंगन करके ऐसी बात कहते थे जिसको अच्छी नहीं लग रही, फिर उसको करने पड़े मजबूर कर देते। और यहाँ मैं महाप्रभु गदाधर का हाथ लेके बोले, प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी बे ये तो मारा उद्देश्य, से सिद्धा हैला छाड़ी आईला दूर देश। कि देखो तुम्हें गोपीनाथ का सेवा छोड़ना चाह रहे थे, तो प्रतिज्ञा त्याग न कर रहे थे, तुम इस वजह से दूर आ गए, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया, अभी जाओ। आमारा संगे रही ते चाह वंछा निज सुख, तुम्हारा दुई धर्म आए आमारा है दुखा। मुरा सुख चाह यदि नीला चले चला, आमारा शपथ यदि अरे किछु बला। तो महाप्रभु ने गदर पंडित का हाथ पकड़ के एक बहुत ही तत्व की बात कही, बोला कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो उसमें क्या है, तुम्हारा निज सुख, ये दिस इज योर निज, ये तुम्हारी अपनी हैप्पीनेस है। तुम्हारा दो धर्म आए हमारा है दुख, पर तुम्हारे ये दो धर्म टूट रहे हैं, क्षेत्र संन्यास गोपीनाथ की सेवा, इससे मुझे दुख हो रहा है। एक तरफ तुम्हारा सुख है और एक तरफ मेरा दुख है, क्या चाहते हो? मेरा सुख चाहिए, मोर सुख चाहिए, यदि नीला चले चला, अगर मेरा सुख चाहते हो तो नीला चल वापस जाओ। हमारा शपथ यदि आर किछ बोला, और मेरी शपथ है कुछ और आगे नहीं बोलना नहीं। तो महाप्रभु ने सास बोला कि अपने सुख की कामना अगर चाहते हो तो तुम चल ही रहे हो, पर अगर मेरा उससे मुझे दुख हो रहा है, अगर तुम मेरा सुख चाह रहे हो तो चुपचाप नीलाल चले जाओ। इतना बोला नहीं, गदाधर पंडित वहीं पर मूर्छित हो गए। मतलब वो महाप्रभु का दुख नहीं चाह सकते थे, अपना सुख की इच्छा को त्याग करके वो वहीं पर मूर्छित हो गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो इतना प्रेम करते हैं, जो कि एक रोज के समान कोमल है, बिल्कुल कठोर सा उन्होंने बर्ताव किया, महाप्रभु वैसे गदाधर को वहीं पे मूर्छित छोड़ के तुरंत नाव पे चढ़े, बोले चलाओ, इससे पहले ये होश में आ चलाओ नाव यहां से, तुरंत निकल पड़े वहां से। और सर्वम भट्टाचार्य को बोला तुम रुको, इसको संभालना। जब गदाधर पंडित होश में आए तो बहुत दुखी हुए, बहुत रोने लग गए, पर सर्वम भट्टाचार्य ने समझाया, देखो महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण उसी भगवान श्री कृष्ण है, जैसे श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग किया था भीष्म देव की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए, तुम्हारी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए किया। ऐसा नहीं कि महाप्रभु को दुख नहीं हो रहा है तुमसे अलग होकर, महाप्रभु को भी विरह तुम्हारे विरह में दुख हो रहा है, पर महाप्रभु दुख सहने को रेडी है तुम्हारी प्रतिज्ञा को रोकने के लिए, तुम चलो, इसी में महाप्रभु की सुख है। तो गदाधर पंडित आते हैं वापस। तो ये प्रिंसिपल कि अपने सुख की इच्छा को त्याग करके भगवान के सुख के बारे में सोचना, विनम्रता को अनुकूल करना, तरोर अपि सहिष्णु होना, ये भाव एक वैष्णविज्म का कोर भाव है। यही टीचिंग्स श्री तुकाराम महाराज के जीवन में से भर के मिलती हैं। तुकाराम महाराज का जन्म देहू नामक एक गांव में हुआ, ये पुणे शहर के अभी आप कह सकते हैं आउटस्कर्ट्स में है, उस समय थोड़ा डिस्टेंस पे था, अलग में है। और देहू और आलंदी बहुत ही फेमस स्थली है वैष्णव के लिए भ्रमण करने के लिए, अगर कोई पुणे जाता है यहाँ पे जा सकते हैं, जाना चाहिए उस जगह के दर्शन करने। वंशवर्धन प्रभु यहाँ से आते हैं, कई बार लोग गए होंगे देहू में। तो वहाँ पे श्री तुकाराम महाराज जब रहते थे तो शुरुआत में उनको किसी लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे और अलग लोग अलग अलग प्रकार की यातनाएं देते थे, उनको बिजनेस में चीट करते थे। परंतु तुकाराम महाराज बिल्कुल विनम्र भाव से भगवान की सेवा में लगे रहते थे, वो उत्तेजित नहीं होते। जैसे हमारे हमारे आचार्य दिखाते हैं, हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देखते हैं कि लोगों ने उन पर प्रहार भी किया तो भी वो उत्तेजित नहीं हुए, उस भाव को, उस अलग अलग यातनाओं को सहते रहे और भगवान का नाम लेते रहे। उसी प्रकार से तुकाराम महाराज के जीवन में भी घटनाएं आती हैं। एक वक्त मैं कई सारे पास टाइम पढ़ कई सारी लीलाएं पढ़ी तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लीला आई। तो तुकाराम महाराज एक जगह जा रहे थे और उस जगह पे मच्छरों का बहुत बड़ा झुंड था, तो मुझे ये लीला पढ़ी तो मुझे पंजाबी बाग में एक फिर मैंने कहा ये लीला जरूर शेयर करूंगा। तो हम देख सकते हैं हमारा और महान वैष्णव के चरित्र में क्या गैप है। तो मैंने सोचा ये लीला हम चर्चा करते हैं। तो तुकाराम महाराज थे, उन मच्छरों ने पूरा अटैक किया। आज सुबह जब इस क्लास को प्रिपेयर ही कर रहा था तो मच्छर कुछ आए, मैंने ये किया, दो चार मच्छर गिर गए। तो मुझे वहीं से थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, मैंने कहा चलो ये लीला सुनाता हूँ, शायद कुछ गुण आएंगे। तो क्या हुआ, तो क्या महाराज ने क्या रिएक्शन किया, बोले कितने भूखे हैं मच्छर और ये मेरे शरीर से खून ले रहे, तो लेने दो, मेरा जीवन क्या फायदा इस जीवन का है अगर परोपकार के लिए नहीं यूज हो रहा है, क्या फायदा अगर मैं अन्यों के कल्याण के लिए जीवन यूज ना करूं, कैसे इन मच्छरों को मैं हटा सकता हूं, इससे बेहतर तो मर जाना अच्छा है अगर इन मच्छर को हटाऊं, तो मैं यहीं पे बैठता हूं। वो बैठ गए, वो मच्छरों को पूरा अपॉर्चुनिटी दिया, चूसो मेरे शरीर से जितना खून चूस सकते, जितना फीस ले सकते लो। तो मच्छर आ गए और मच्छर ने जाके और अन्य मच्छरों को भी सूचना दी, यहाँ पे कोई स्पेशल व्यक्ति आया, वो और मच्छर आ गए, आते आते फिर मच्छर ने पूरा घेर लिया। तुकाराम बिल्कुल वैसे ही बैठ गए और मच्छर ने पूरा घेर लिया। वो तो तुकाराम महाराज को पर अटैक किए जा रहे हैं, पर तुकाराम महाराज टॉलरेट कर रहे हैं, पर कौन टॉलरेट नहीं कर पाया, विट्ठल भगवान श्री कृष्ण जो कि रुक्मिणी पति वहां पे, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाए। वो बोले ये मच्छर की औलाद, सब पीछे पड़ गए तुकाराम के। वो एक यात्री का वेश लेके आए, अपने साथ में कुछ झाड़ी वाड़ी लेके मच्छर को फट 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 करके हटाया और तुरंत तुकाराम को, अरे महात्मा जी क्या कर रहे हैं आप, उनको उनको शरीर पे हाथ फेरा ये सब। जैसे भगवान ने हाथ फेरा तो तुकाराम जी के शरीर में जितना भी यातना जितना भी पेन हो रहे थे, हालांकि उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, पेन तो हो रहा था, दर्द तो हो रहा था, वो सारा धीमे 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 चला गया। तो मैं जब भी हम हमें मच्छर कोई आए, हम तुकाराम महाराज को याद कर सकते हैं। मच्छर मान वैष्णव की एक लीला में एक ऐसी एक और लीला ही, वो एक और गांव में जब गए तो वहां पे कई सारे पक्षी थे जगह बैठे हुए थे, और तुकाराम महाराज जैसे उस डायरेक्शन में चलने लगे वो पक्षी सारे उड़ गए। तो तुकाराम महाराज अपने आप को कोसने लगे, देखो मेरे अंदर कितना द्वेष है, कैसा ऐसा भाव है कि मेरे भाव को ये पक्षी तुरंत समझ गए और मुझसे डर के सारे उड़ गए। मैं अपने आप को जबरदस्ती वैष्णव समझता हूं, मैं सोचता हूं मैंने क्रोध त्याग दिया है, द्वेष त्याग दिया है, हिंसा त्याग दी है, और इस सोच के मैं सोचता हूं मैं शुद्ध हो गया हूं, और ये पक्षी जितने हैं इस भाव को समझ गए, उड़ गए। क्या फायदा ऐसे जीवन का, हे पंडरीनाथ, हे विट्ठल, हे भगवान श्री कृष्ण, क्या फायदा ऐसे जीवन का कि मैं दूसरों के उद्वेग का कारण बनूं, मेरी वजह से पक्षी अपनी जगह छोड़ के उठ रहे हैं, इससे बेहतर तो मैं जीवन छोड़ दूं। और वो वहीं पे खड़े हो गए, बोले तब तक मैं नहीं हिलूंगा यहां से जब तक ये पक्षी वापस नहीं आए। वहीं पे वैसे ही खड़े हो गए जैसे मूर्ति खड़ी होती है, अपनी आंखों को भी उन्हें मतलब जो क्या कहेंगे पलक झपकना भी बंद, रोक लिया, कोई रोक सकता है पता नहीं, पर तो कह राम जी ने वहीं पर रोक लिया पलक झपकना। वो वैसे ही खड़े हो गए, खड़े रहे और ना खाना पीना तो छोड़िए, जब आंख पलक नहीं झपका रहे काफी देर करते, विट्ठल सोचे अभी क्या है, किससे पलक पड़ा। तो जितने भी पक्षी थे, जितने भी पक्षी थे उनके हृदय में तो भगवान बैठे हुए, तो बोले चलो यार वापस चलो। सारे पक्षी अलग अलग यू टर्न लेके आए उस जगह पर, नहीं सब आके तुकाराम जी के ऊपर बैठ गए, सारे पक्षी तुकाराम के ऊपर बैठ गए, ची 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 ची, बोले कि इसको इससे कम में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सब कुछ घेर के वहां पे खूब सारे पक्षी तुकाराम के ऊपर आस पास जब सारे बैठ गए तो तुकाराम को बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया ये विट्ठल की कृपा। अगर सारे पक्षी मेरे ऊपर बैठे ही हुए हैं तो क्या फायदा मैं क्यों हिलूं। तो भगवान बोले क्या है ये, पहले भी नहीं हिलता अभी भी नहीं हिलता। तब तुकाराम के कुछ शिष्यों को वहां पे भगवान ने भेजा, बोले चलो चलो तुकाराम से मिलो। वो आए, उन्होंने पक्षियों को बोला अच्छा हटो हटो मेरे गुरु जी को छोड़ो। फिर तुकाराम को वहां पे बैठने, तुकाराम जी वहां से आगे चले। तो ये भाव अपने हृदय में वो रखते थे कि किसी भी परे उद्वेग, ये किसी भी अन्य व्यक्ति को उद्वेग देने की भाव को वो हटा के रखते थे। तो हमारे संप्रदाय में हम देखते हैं वो वसुदेव मित्र, वो कैसे उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है और एक कीड़ा नीचे गिर रहा है, उस कीड़े को वापस उठा के रखना है। अरे इसको दिक्कत होगी, क्षमा करना, तुम्हारा हमने मेरे फूडिंग लॉजिंग से तुम्हें अलग किया, वापस उठा के उसको रख रहे हैं अपने शरीर के ऊपर। क्या ये भाव है? ऑफकोर्स जब ऐसे भाव चर्चा हो रही है तो हम उस क्वांटिटी में उसको एमुलेट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, परंतु अपने जीवन में हम अवलोकन ये कर सकते हैं कि हम किसी और को हम किसी प्रकार की यातना दे रहे हैं कि नहीं, किसी और के प्रति क्या हम किसी प्रकार की हिंसा कर रहे हैं कि नहीं। भक्तिनाथ ठाकुर को उस भजन में लिखा कि अपना ऑक्यूपेशन करो पर इस प्रकार से करो कि किसी और को कोई उद्वेग नहीं हो रहा हो, किसी और को कोई समस्या या नहीं हो रही हो। आज के समय के जो प्रभुपाद बोलते थे उग्र कर्म सिविलाइजेशन, जहां पे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ये बेस्ड ही है, मैं प्रॉफिट कमाऊं, एनवायरनमेंट में धुआं छोड़ो, बाकी लोग धुआं को अंदर इनहेल करें, उनका कुछ भी हो मैं आराम से ऐश करूं। तो ये एक मॉडर्न सिविलाइजेशन उग्र कर्म है जिसमें व्यक्ति अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचता रहता है और अपना काम बनता भाड़ में रह जाता। मैं अपना अच्छा काम करूं, जैसे प्लास्टिक, मुझे याद है जब मैं 20th जब मैं स्कूल में था और हम लोग हमारे स्कूल में मेरे स्कूल में क्विज कॉन्टेस्ट वगैरह का बड़े तैयारी करते थे, बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट ये वो, तो हम लोग रटते थे कि प्लास्टिक कन्वेंशन किसने किया, क्योंकि 20th सेंचुरी का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन माना जाता था प्लास्टिक। एक इतना अभूतपूर्व चीज डिस्कवर हुई, हम डिस्कस करते, मैं तो नाम भी भूल गया, उसे मैं याद किया था प्लास्टिक किसने इन्वेंट किया। आज उस व्यक्ति के नाम के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो बिगेस्ट इन्वेंशन नहीं, बिगेस्ट मिस्टेक रहा। कैसे हमारा काम बने कि हम किसी तरह हम खाएं पिए और उसके बाद छोड़ दें, फेंक दें बाहर, कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी जाए, धाम में गिरे, कहीं पे भी गिरे, अब गाड़ी में चले, कुछ भी चले, धुआं बाहर। दिस इज होल सिविलाइजेशन, हम भी इसके पार्ट हैं। प्रभुपाद बोलते थे बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, यथासंभव उस बार्गेन को हम इसको मिनिमाइज कर सके इन सारी चीजों को अपने जीवन से जो किसी प्रकार से अन्य लोगों को उद्वेग देती हैं, तो उतना अच्छा है। अब कई बार आज के समाज में लोग जस्टिफाई करने लग जाते हैं, अन्य लोग हैं वो तिकड़मबाजी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अगर तुम्हें जीवन जीना है तो तुम्हें भी टेढ़ा जीना पड़ेगा। परंतु हमारे आचार्य सिखाते हैं इसकी जरूरत नहीं है नेसेसरीली, हम शुद्ध भाव के हो सकते हैं और जीवन जिया जा सकता है। तुकाराम महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे महान एग्जाम्पल्स आए यही सिखाने के लिए कि ये प्रैक्टिकल है, हो सकता है उस लेवल पे ना हो, सर्टेन लेवल पे किया जा सके, किया जा सके। सो अपने जीवन में हम क्या कुछ प्रिंसिपल्स को हम फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने जीवन में, आज अवलोकन कर सकते हैं कि किन चीजों को अपने जीवन में मैं अपनाऊंगा जिसकी वजह से अन्य लोगों पे हम उद्वेग कम कर सकता हूँ, अन्य लोगों पे के ऊपर मैं यातनाएं कम कर सकता हूँ, अन्य लोगों को डिस्कम्फर्ट कम कर सकता हूँ। एक भक्त बोल रहे थे हो सकता है अपने ऊपर से आने वाले हम कीड़े को ना हटाए, परंतु अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो में या कहीं पे, कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई नीडी व्यक्ति, क्या हम खड़े होते हैं? This is part of Vaishnavism. वैष्णविज्म का अर्थ ये नहीं है सिर्फ कि हमने अपना एक साधना को कंप्लीट किया, 16 माला का जप किया और मंगल आरती किया, एक इट्स अ पार्ट ऑफ वैष्णविज्म। हमारे जीवन क्या है कि अगर प्रसाद का लाइन लग रहा है मैं बीच में धक्का मुक्की करके घुस रहा हूं, दर्शन के लिए मैं अन्य वैष्णव को धक्का मार के बीच में अंदर घुस रहा हूं, या कोई लाइन मंदिर में जन्माष्टमी फेस्टिवल के लिए लाइन बनवाई गई, मैं लड़ाई करके मुझे पहचानते नहीं, ये नहीं करते वो नहीं करते, मैं वहां पे तिकड़म लगा के घुस रहा हूँ, अन्य लोगों को घुसा रहा हूँ, या मैं चुपचाप लाइन में पीछे जाके लग रहा हूँ। कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो भगवान को प्रसन्न करेगा, अन्य लोगों को उद्वेग नहीं देगा और भगवान को प्रसन्न करेगा? ये दिस इज पार्ट ऑफ वैष्णव, दिस इज वैष्णविज्म। अगर खाली नाम जब कंप्लीट कर लेना, खाली मंगल आरती कर लेना, खाली पाठ कर लेना, उसको अगर हम वैष्णविज्म समझेंगे, उसको वैष्णव धर्म समझेंगे, तो ये नियमाग्रह हो जाएगा। वो नियमाग्रह हो जाएगा, वो ऐसी साधना जो जो कि दैवी गुणों को विकसित नहीं कर रही है। परंतु अगर ये साधना से हम चाहते हैं कि हमारे दैवी गुण विकसित हो, तो इस प्रकार के गुणों को अभ्यास करना, इस प्रकार के गुणों के को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस करना। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास कुछ प्रसाद है, कोई भूखा व्यक्ति निकलता है, तो हम क्या करते हैं उस प्रसाद के साथ? How much we can give, how much we cannot, कितना दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते, कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, अन्य questions, these are questions। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं खुद कर रहा हूँ, it's बहुत lack कर रहा हूँ, but this is a question I'm putting to myself and to all of us। हम contemplate कर सकते हैं कि क्या वैष्णविज्म है और हम किधर जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा प्रेयर है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, जो कि क्रिश्चियनिटी के पंथ में महान संत रहे, सेंट दो सेंट फ्रांसिस रहे, एक सेंट फ्रांसिस जेवियर जिन्होंने बहुत सारा धर्म परिवर्तन करवाया भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पे मुख्यतः, और उनका एग्जांपल सही नहीं है, वो आसुरिक स्वभाव के थे, परंतु सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी जिनको श्रील प्रभुपाद ने बोला फर्स्ट क्लास गॉड कॉन्शियस पर्सन, प्रभुपाद ने एक जगह पर बोला, मतलब उत्तम अधिकारी, तो उत्तम अधिकारी हैं। उनकी एक बहुत सुंदर प्रार्थना है जो मैं स्कूल में रिसाइट करता था, पर मैंने फिर से उस समय पहले पढ़ी तो अच्छा लगा। वो बोलते हैं, ओ लॉर्ड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई पीस, वेयर देयर इज हेट्रेड लेट मी सो लव, वेयर देयर इज इंजरी पार्डन, वेयर देयर इज डिस्कॉर्ड हार्मनी, वेयर देयर इज डाउट फेथ, वेयर देयर इज डिस्पेयर होप, वेयर देयर इज डार्कनेस लाइट, वेयर देयर इज सोरो जॉय, ओ डिवाइन मास्टर ग्रांट that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love, for it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life। एक छोटा सा बस प्रार्थना कर हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। इज अ गुड फूड फॉर थॉट, एक अच्छा विचार है हमें अपने साथ कैरी करने के लिए। अगर आपको उचित लगे आप कैरी करके जा सकते हैं, छोटा सा मीनिंग डिस्कस करूंगा। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मुझे अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाइए अपने मिशन में, और कैसा बनाइए कि मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाइए कि जब मैं इंट्रोड्यूस करूं, मैं ये चीजें ला सकूं। क्या चीजें ला सकूं? मैं प्रेम ला सकूं जहां पे घृणा है, मैं क्षमा ला सकूं जहां पे प्रहार है, मैं एकता ला सकूं जहां पे लोग लड़ रहे हैं, मैं श्रद्धा ला सकूं जहां पे शंका है, मैं आशा ला सकूं जहां पे लोग निराशा में हैं, मैं रोशनी ला सकूं जहां पे लोग अंधकार में हैं, मैं आनंद ला सकूं जहां पे लोग दुखी हैं। ज्यादातर ये सारी चीजें हम खुद मांगते हैं अपने जीवन में, पर ये कह रहे हैं कि मैं ला सकूं अन्यों के लिए। हे भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करें, मैं खुद याचना ना करूं, इस चीज की कि लोग आखे मुझे क्या कहेंगे, कंसोल, कंसोल का क्या कहेंगे, सांत्वना दे, लोग मुझे आके सांत्वना दे, सहानुभूति दे, मुझे नहीं चाहिए सहानुभूति, मुझे ऐसी ऐसी क्षमता दे कि मैं औरों को जाके शांत, औरों के दुख में दुखी हो सकूं, औरों के सुख में सुखी हो सकूं। हे भगवान, मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं ये ना, कि मेरे अंदर ये गुणा कि मैं ना ये ना समझे कोई किसी, कोई लोग मुझे आके समझे, मुझे समझे, मेरे को किसी ने समझा नहीं, मुझे किसी ने समझा नहीं, मैं इस चीज पर आश्रित ना हूं कि लोग मुझे समझे आके, बल्कि मुझे ऐसा गुण दे कि मैं औरों को जाके समझ सकूं। हे भगवान, मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं प्रेम का इच्छुक नहीं, कि लोग ये करें कि लोग मुझे आके प्रेम करें, मुझे प्रेम करें, मैं अन्यों को जाके प्रेम करूं। असल में जब हम दूसरों को देते हैं तो हम सच में पाते हैं, जब हम किसी और अन्य को क्षमा करते हैं तब हमें सच में क्षमा मिलती है, और जब हम अन्यों के लिए मरते हैं तब हमें नित्य जीवन मिलता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरतामृत की जय। श्री प्रभुपाद की जय।